थी। ये विशेष समागम कहो, संगठन कहो, कुंभ मेला कहो, सारे विश्व इतिहास में अद्भुत है। इस तरह का मिलन, इस तरह का समागम, इस तरह का व्यक्त मिलन न पहले कभी हुआ न होगा। कल्प में ये थोड़ा सा संगम का समय है जब स्वयं भगवान इस धरा पर आते हैं। और उनको पहचानने वाले पहले पहले निमित्त इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के आधार मुहूर्त हम सब के परम प्रिय कहें, साकार ब्रह्मा बाबा, इस समय कहेंगे अव्यक्त बाप दादा, वो निमित्त बने एक विचित्र नया संगठन बना, नई शुरुआत हुई। भारतीय पद्धति के अनुसार, प्रथा के अनुसार कोई भी आध्यात्मिक संगठन में प्रारंभ में हमेशा ओम की ध्वनि से शुरुआत होती है। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत में आप सबको पता है ओम का उच्चारण होने के कारण, क्योंकि ओम उसके अर्थ तो बहुत सारे निकालते हैं लोग, लेकिन एक परमात्मा के स्वरूप की मान्यता ओम के रूप में। इसलिए बहुत प्यार से ओम की ध्वनि करते थे। तो विश्वविद्यालय का नाम ओम मंडली पड़ गया था। वो ओम मंडली आज विश्वविख्यात प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के रूप में विश्व के कोने कोने तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या सेवाएं दे रहे हैं? जिसको ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या करते रहे, हट करते रहे, जब स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद अपना यथार्थ परिचय देते हैं, परिचय देने के बाद हम सब आत्माओं को एक नया दिव्य जन्म देते हैं। जो हम लौकिक नाम रूप उसी से अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, उसको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा परिवर्तित किया कि जो देखने में आते हैं स्थूल रूप से, ये आपका शरीर है, ये आपका माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने आप को व्यक्त करते हैं, उसको भिन्न भिन्न शब्दों में लोगों ने कहा एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, पार्ट बजाते हैं। पार्ट बजाने वाला कौन? हर शरीर के अंदर विराजमान इंडिविजुअल, अपनी अपनी आत्मा है। जो निराकार भी है, साकार में होते हुए जीवात्मा कहलाती है, और सर्व आत्माओं का अनादि पिता, आत्माएं भी अनादि हैं, अविनाशी हैं, तो सर्व आत्माओं का अनादि पिता परम पिता परमात्मा शिव है। साउथ इंडिया में खास भजन के रूप में उनकी स्तुति जब करते हैं तो उसको निराकार कहते हैं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब हम सब आत्माओं को जागृत करने के लिए अपना यथार्थ परिचय दिया, हम आत्माओं का यथार्थ परिचय हमें कराया, उससे एक नई सोच, नया दृष्टिकोण मिला, जीवन का एक नया लक्ष्य, और उस लक्ष्य के फलस्वरूप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन आ गया, खान पान में परिवर्तन आ गया, समझ आने लगी कि वास्तव में हम सब आत्माएं अनादि काल में आत्मा है, आदि काल में जीवात्मा के रूप में हम सब देवी देवता हैं। बहुत से साइंटिस्ट कई बार ये आर्गुमेंट करते हैं, मनुष्य पहले क्या था, धीरे धीरे वो ऐसा अपने में उन्नति करते करते ऐसा बना है, लेकिन कहा जाता है मनुष्य के मन में कुछ और, भगवान के मन में कुछ और। भगवान ने कहो, शिव बाबा ने कहो, आकर के जब परिचय दिया तो कहा नहीं, आप पहले जानवर नहीं थे, आप देवता थे, फिर से देवता बनने का लक्ष्य दिया। जब दैवी गुण थे जीवन में तो देवता थे, अब नहीं है दैवी गुण तो साधारण मनुष्य है, जब देवता थे तो इच्छा मात्र अविद्या थे, जब देवता थे तो दैवी गुण संपन्न थे, आज की मुरली अनुसार भी उस समय सदा स्वस्थ थे, सदा तंदुरुस्त थे, धन धान्य संपन्न थे, जीवन मुक्ति का आनंद ले रहे थे। एक बात जरूर कहूंगा कि इस ज्ञान मार्ग में कुछ जैसे लौकिक में बचपन होता है, फिर युवा अवस्था में आते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कारोबार में लगते हैं, और वहां तो फिर क्या कहें उसको, ऐसा समय भी आता है जो रिटायर होना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में खासकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया है, उनके लिए रिटायरमेंट एज है नहीं। देख रहे हैं आप दादी जानकी जी को, कितना भी कोई कहे दादी अभी आप बस बहुत सेवा कर ली, नहीं करेंगी। और इससे क्या सिद्ध होता है कि ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि हम सदा एक्टिव रह सकते हैं। 63 जन्म का द्वापर कलयुग का कोई रहा सहा हिसाब किताब अगर कोई है, वो भी चुप्त होता है, साथ साथ योग बल के द्वारा भी चुप्त होता है, थोड़ा सहन शक्ति के द्वारा भी चुप्त होता है, कुछ डॉक्टरों के हिसाब किताब का भी चुप्त होता है, लेकिन हर ब्रह्मा कुमार हर ब्रह्मा कुमारी हर भाई हर बहन को आनंद किस में आता है? आनंद आता ही है सवेरे सवेरे बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी याद में बैठने में, और उसके बाद बाबा के महावाक्य सुनने में पढ़ने में। संजीवनी बूटी के रूप में बाबा की याद और मुरली, ये दो चीज प्रैक्टिकल में हम अनुभव करते हैं। और वो जब से हमने शुरू किया 55 साल पहले, आज दिन तक उसके बल से चल रहे। तो बचपन में बाबा ने जो पालना दी उसका वर्णन करूंगा तो फिर आप लोग थोड़ा सा सोचने लगेंगे, काश के हमें भी ये पालना मिलती, हमको क्यों नहीं मिली। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुनता हूं कि जब हम सुनाते हैं तो भाई बहने अपने आप सुनते सुनते उस समय में पहुंच जाते हैं जैसे कि वो स्वयं साकार बाबा के सामने शिव बाबा के दृष्टि के द्वारा अपने आप को भरपूर कर रहे हों। क्योंकि मुझे याद आता है हम जब भी बाबा के सामने बैठते थे, मम्मा के सामने बैठते थे या दादी के सामने बैठते थे, गुलजार दादी के सामने बैठते थे, किसी के भी सामने, बड़ी दादियों के सामने, दीदी मनमोहिनी के सामने, दृष्टि मिलते ही इतना नशा चढ़ जाता था। कारण कि अपने निज स्वरूप में हम आत्मा स्थित हो जाते थे, और हम आत्मों का निज स्वरूप जो है वो है ही अति इंद्रिय सुख स्वरूप, क्योंकि उसमें सर्व गुणों का सर्व शक्तियों का मिश्रण होता है, और उसके फलस्वरूप आत्मा अपने आप में स्वयं ही इतना आनंदित हो जाती है, चेहरा एकदम खिला रहेगा, नैनों में वो खुमारी आ जाती है और दिल होगी बस बाबा को देखते रहें। गीत भी है ऐसा एक, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, तो एक तो देखते रहें और दूसरा था साकार में इतना तो जरूर था जो आज बड़ा मुश्किल है, दादी आप सबको अपने गले तो नहीं लगा सकती, सिर्फ इशारे में ऐसे करेंगी ऐसे करेंगी, मैं सबको गोद में ले लेती हूं, लेकिन साकार में थोड़े भाई बहने थे तो बाबा से अच्छी तरह बहुत समीप से दृष्टि लेते लेते बाबा से गले मिलना, बाबा से टोली मुख में लेना, बाबा के साथ नजदीक से रू रुहान करना, बाबा के साथ खेलना। अब आप सुनाइए और क्या क्या सुनेंगे, ब्रह्मा भोजन साथ में बैठ के करना, पिकनिक साथ में बैठ के करना, और फिर रात्रि क्लास के टाइम पर बाबा की उनके अनुभव की बातें सुनना, राजाओं महाराजाओं के साथ की बातें सुनना, सोने से पहले उनके पास बिस्तर पर बाबा लेटे होंगे अपने, हम लोग पास बैठ जाएंगे तो बाबा उस समय की बातें सुना करके ऐसे हम लोगों को अनुभव कराते थे जैसे बाबा के साथ हम भी, जैसे बाबा को वो कहते थे लखीराज, राजा हम नहीं तुम राजा हो, तो हम भी बाबा के साथ ये सुनते क्या फील करेंगे उस समय कि हम भी प्रिंस हैं प्रिंस हैं प्रिंस हैं। तो ऐसी बातें जब मैं कभी सोचता हूं कि बाबा ने शुरू में इतना बचपन में ही इतना सुंदर अनुभव करा दिया, इतना सुंदर नशा चढ़ा दिया और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप फिर कैसे आता है, बाबा ने पहले पालना दी, पालना दे करके बड़ा किया और फिर सेवा में लगाया। हर एक मां बाप क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके और कमाऊ पुट बन जाएं, कमाऊ पुट समझते हैं कमाने वाले पुत्र बन जाएं। तो जितने भी भाई बहने हैं उसमें भी खास अधिकार ज्यादा बहनों को मिला शुरू से लेकर के। थोड़े दिन पहले बाबा ने एक मुरली में बताया था कि देखो बाबा ने भी शुरू में ट्रस्ट बनाया तो बच्चियों को दिया, जिसमें तीन माताएं थी पांच कुमारियां थी, उनके हवाले सब कुछ किया था। तो आज से लेकर के बाबा ने बहनों को आगे रखा, क्यों, उसका बहुत राज है। बाबा खुद सुनाते थे बच्चियां ट्रस्टवर्दी होती है, सिंसियर होती है और सेवा भाव बहुत बच्चियों में होता है, इसलिए और उससे ज्यादा। तो बाबा ने फिर थोड़ा सा आध्यात्मिक रीति से, सत्ययुग में क्या प्रथा है, पहले कौन है, श्री नारायण है या श्री लक्ष्मी है, पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, त्रेता में पहले श्री सीता फिर श्री राम, आजकल का क्या रिवाज है, पहले मिस्टर फिर मिसेस, ऐसे है ना, उल्टा कर दिया सर। तो बाबा ने शुरू से लेकर के इस तरह का माहौल बनाया और पक्का कराया कि इसमें राज क्या है, और बाद में लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करके लिखत में लिखा है, When you change a man, you change one person. When you transform a woman, you change the whole society. सारी संसार को चेंज कर देते हैं जैसे। आज बाबा के ये महावाक्य प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि सारे संसार को ट्रांसफॉर्म करने का, बदलने का, कलयुग से सतयुग में ट्रांसफॉर्म करने का वो प्रैक्टिकल कार्य इस समय हो रहा है, जिसमें के ब्रह्मा कुमारी बहनों का लीडिंग रोल हमेशा देखने में आता है। और इसके साथ साथ में कुछ बाबा की ऐसी बातें हैं, साकार बाबा की, जो दिल को छूने वाली हैं। बहुत क्लियर बाबा ने कई बार मुरली के अंदर सुनाया तो है, पर कभी कभी हम नोट करते, कभी नहीं करते। साकार बाबा कभी भी अपने रोल को शिव बाबा के रोल के साथ मिक्स नहीं किया। बाबा बाबा है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाबा ब्रह्मा को फिर बाद में बड़ी मां के रूप में भी व्यक्त करते थे। ब्रह्मा मां भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी है, लेकिन शिव बाबा अनादि अविनाशी पिता है। आत्माएं अनादि अविनाशी हैं, शिव बाबा अनादि अविनाशी है, और उनका अनादि अविनाशी बाप और बच्चे का रिलेशनशिप है। लेकिन ब्रह्मा के द्वारा जब ये कलयुग के अंत समय परिवर्तन का समय है, तो उस समय ब्रह्मा बाबा का पाठ शुरू होता है। तो ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे, देखो जैसे आप बच्चे हो, ये ब्रह्मा बाबा भी आपके जैसा। इसलिए ब्रह्मा बाबा कभी अपने पांव को हाथ नहीं लगाने देते थे, कभी नहीं लगाने देते थे। बहुत सिंपल लाइफ में थे, कहां तो राजाओं महाराजाओं के साथ कारोबार, बहुत बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के लिए, क्वीन के लिए नेकलेस बना के देना, ये करना, वो सब डायमंड्स का दिया। और जब बाबा ने सत्य ज्ञान दिया, सच्चे ज्ञान रतन दिए, अविनाशी ज्ञान रतन दिए, तो बाबा ने क्या रियलाइज किया, क्या महसूस किया, ये सब पत्थर है। सच्चे ज्ञान रतन तो बाबा के पास है। ऐसा वैराग आया जो बस, बाबा कहते थे देखो जैसे बिजनेस में था मैं वैसे का वैसे इसमें हूं। मार्किन की कमीज, मलमल की धोती, और पांव में जब से यज्ञ शुरू हुआ तो लकड़ी की खड़ाम पहनना शुरू कर दिया। इतनी सिंपल लाइफ। और जब कभी किसी से मिलना हो, चाहे कोई गवर्नर हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई एम्बेसडर हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, जैसे ये स्टेज पर सफेद चादर बिछी हुई है ना, ऐसे बाबा सफेद चादर बिछवाते थे। उनके आप ऊपर भी जाएंगे रूम को देखेंगे, पर्दे भी सफेद, नॉर्मली तो सब डार्क करना चाहते हैं नींद आने समय ऐसा हो, लेकिन बाबा के लक्ष्य ही कुछ और थे। सफेद पर्दे, कभी दरवाजा बंद नहीं करने का, नीचे बैठने के लिए गद्दी बनाई हुई, गद्दी भी सफेद, कोई और तरह का आसन नहीं, उसके सामने नीचे दरी बिछा के उसके ऊपर भी चादर सफेद, स्वच्छता की निशानी, प्यूरिटी की निशानी, अंदर बाहर प्योर एकदम होना चाहिए। और बाबा की सदा जागती ज्योत प्रैक्टिकल देखी, कभी भी हम सोचेंगे बाबा इस समय आराम में होंगे, फिर भी दिल होती थी जाके थोड़ा देखें तो सही, थोड़ा सा पर्दा ऐसे करेंगे तो बाबा लेटे तो ऐसे होंगे ऐसे करके, लेकिन बोलेंगे आओ बच्चे, ये नहीं कोई कभी कहेंगे कौन है, ऐसा कभी नहीं कहेंगे, आओ बच्चे। तो ऐसी ऐसी बातें जो बाबा की, हर बच्चे से इतना प्यार, जो भी साकार बाबा से मिलने वाली आत्माएं, आज भी कोई बहने मिली, वो उनके दिल पे जो छाप लगी हुई है, हर एक बच्चा यही कहेगा जितना बाबा ने मुझे प्यार दिया और किसी को नहीं दिया। तो हम बच्चों को क्या करना है, तो मैं इस बात को लेकर के बाबा को अपना रोल मॉडल समझ के अपने सामने रखता हूं। पुरुषार्थ करता हूं, कोशिश करता हूं अपनी तरफ से, जैसे बाबा ने सबके साथ ऐसा निजी संबंध रखा, इतना प्यार का संबंध, कभी ये नहीं पूछा पहले तो कभी मिले नहीं, ऐसा नहीं कहा। बाबा हमेशा कहते थे ये कल्प पहले वाले बच्चे फिर से मिल रहे, तो वही अगर अपने दिल में हमारे ये अगर बाबा पक्का कराता था बच्चे, अभी अव्यक्त बाबा भी तो यही कराते हैं गुलजार दादी के द्वारा, बच्चे कल्प के बाद मिले हो आपस में, सोचो तो सही, भले आप सतयुग से लेकर के साथ में थे पर एक दो को पहचानते नहीं थे, अभी कल्प के बाद फिर से इसी स्वरूप में मिले हो और सभी बाबा के बच्चे हो, तो एक दोस्त से कितना उस भावना से, उस ऊंचाई से एक दो की इज्जत करते हुए, एक दो के प्रति ऐसे भाव रख करके जब दृष्टि मिलाएंगे, मुस्कुराते रहेंगे, चाहे साइलेंस में रहें चाहे बात करें, लेकिन खुशी जरूर होगी, मन में खुशी होगी। और एक बड़ी विशेष बात है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों की, सारे संसार
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज, काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज,
जन्म जन्म की प्यास बुझा ले पावन फल सरकार,
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा,
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं
तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज,
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं
तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज।
सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज,
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। तो यही ज्ञान का सार,
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
दूर होगी, मन में खुशी होगी। और एक बड़ी विशेष बात है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों की सारे संसार के अंदर पहचाने जाते हैं, बैज से सिर्फ नहीं। किससे पहचाने जाते हैं? चेहरे से, नैनों से। क्योंकि ऐसे मुस्कुराते चेहरे कहीं नजर नहीं आते। तो दूसरा बाबा से एक विशेष वरदान जो मिला शुरू से, वो था कि सवेरे उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करके आधा पौना घंटा बाबा की याद में जरूर बैठना है, और उसमें लक्ष्य रखना है कि आज बाबा से कुछ नया अनुभव करना है, आज बाबा से कुछ नई शक्ति भरनी है, आज बाबा से कोई नया वरदान प्राप्त करना है। इस लक्ष्य से जब बैठेंगे हर बार आपको कुछ नवीनता का अनुभव होगा, और उस नवीनता के अनुभव में आपको बाबा की समीपता का सबसे ज्यादा अनुभव, और जितना बाबा की समीपता का अनुभव होगा आपको नींद नहीं आएगी, मेडिटेशन के टाइम पर झटका नहीं आएगा कभी, क्योंकि अंदर की तीसरी आंख जो है ना, तीसरा नेत्र, वो खुला हुआ है, और उसके साथ में फिर बाबा के महावाक्य जो हैं, मुरली जिसको हम कहते हैं, वो पढ़ेंगे योग करने के बाद तुरंत बाद, तो वो आपके हृदय पटल पर छप जाएगी, आपको सारा दिन उसकी सहज स्मृति आती रहेगी। दोबारा मुरली सुनेंगे क्लास में और परिपक्वता हो जाएगी। लेकिन आप इस तरह से करके देखिए, ये बाबा ने शुरू में बहुत अच्छी तरह से पक्का किया था। सवेरे का याद का कभी मिस नहीं करना, और मुरली कभी मिस नहीं करना। मुस्कुराते हुए चेहरे का राज क्या है? ये राज है और कुछ नहीं है। आप करके देखो, आप भी सदा मुस्कुराते हैं। अपनों से कहा जाता ना, अपनों से मिलने में खुशी होती है, और उसमें भी जो सुख देने वाली आत्माएं हैं वो मिलती हैं तो और ज्यादा खुशी होती है। अभी दो तीन दिन पहले मेरे पास भाई जी आए हैं, जज साहब हमारे, तो बैठे थे तो मन में बड़ी खुशी हो रही थी। बाबा को याद करते मन में यही आता था बाबा के देखो इतने चुने हुए बाबा के बच्चे लास्ट लाइफ में भी इस जन्म में ये इसको 84वां जन्म हम मानते हैं सभी आप 84वां जन्म है हाथ हिलाएं तो 84 जन्म में भी इतना ऊंचा बाबा ने पद दिया हुआ है इससे पहले 84 जन्म शुरुआत जो है वो तो डबल ताजधारी के रूप में आपकी शुरुआत हुई है ऐसी नशे की बातें बाबा की जब सोचते हैं तो मन कभी उदास नहीं होता है कभी बाबा किसी को थोड़ा सा खासकर कोई बहन को देखते थे ना थोड़ा चेहरा उदासी वाला है तो हंसते हंसते पूछ लेते थे साकार बैव बच्ची क्या बात है मां ने शरीर छोड़ा है क्या मतलब कुछ भी हो और वो दादी प्रकाशमणि के चेहरे से हम लोग देखते थे उनको कभी शारीरिक कोई प्रॉब्लम भी होगी दर्द भी होगा तो भी जब पूछेंगे डॉक्टर पूछेंगे दादी कैसे हैं ठीक हूं थोड़ा सा दर्द है ऐसे करके बोले तो एक क्या कहें उसको हमारी जो अप्रोच है लाइफ के प्रति भावना जो है वो बदल जाती है वही बात ज्यादा सोचो तो सिर भारी हो जाएगा और वही बात को लाइटली ले लो तोड़ते रहेंगे कुछ नहीं होगा और अभी तो क्या कहते हैं नथिंग 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 न्यू कुछ नया नहीं है फिर भी सब नया है नथिंग न्यू बट एवरी मोमेंट इज न्यू अभी नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है उसका तो पता नहीं है याद है आपको नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है एक मिनट के बाद क्या होने वाला है या कुछ ख्याल में है आपको नहीं है तो जो होना है वो नया होगा जो हो गया उसको क्या कहते हैं ड्रामा हो गया तो बाबा ने इन बातों को साकार बाबा ने अपने जीवन में इतना पक्का किया हुआ था कोई ने शरीर छोड़ा जब तक शरीर में है उस आत्मा को बहुत प्यार देगा उसको सकाश देगा शक्ति देगा सब करेगा जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हुई डिटैच्ड बस इसका पार्ट पूरा हुआ दूसरा पार्ट बजाएंगे पहले से और अच्छा बजाएंगे बहुत शुभ सोचते थे तो हम आत्माओं को भी अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी ऐसी शुभ भावना जब सदा मन में रहती है खुद के लिए भी शुभ भावना रहनी चाहिए नहीं तो क्या करते हैं अपने थोड़ी सी कोई तकलीफ हुई तो कहेंगे पता नहीं मेरा क्या कौन सा कर्म है किस जन्म का कर्म है जो ये मेरे सामने बात आती तो बाबा कहता है ये तो बीत जाना है अभी तो टेम्परेरी आई और गई बस और सचमुच ऐसे होता है कोई चीज परमानेंटली आपको कष्ट देने वाली नहीं रहती लेकिन अपने अंदर जब शुभ भावना होगी तो उस शुभ भावना से सारा परिवर्तन हो जाता है अपने प्रति भी शुभ भावना रखनी है दूसरों के प्रति भी शुभ भावना फिर देखो क्या चेंज आती है तो बाबा की ऐसी ऐसी बातें जो प्रैक्टिकल में देखते थे क्या बताएं आपको थोड़ा कोई नटखट भी बच्चे होते थे ऐसा भी था तो बाबा कभी उनको नीची नजर से नहीं देखते थे फिर भी प्यार से देखते थे, दृष्टि देते थे, वही टोली दृष्टि सब गले भी लगाएंगे, कान में बोल देंगे, बच्चे थोड़ा अपना ध्यान रखो बस। तो बाबा की पालना तो इतनी, अभी मैं क्या क्या बताऊं आपको, लेकिन उसके लिए वास्तव में क्या है, जब मौन में रहते हैं तो जो व्यर्थ बातें हैं, अननेसेसरी बातें हैं, उनसे डिटैच्ड रहते हैं, तो एक अंदर में निश्चय होता है सचमुच। बहनें जो बट्टी के लिए कहती हैं, तपस्या के लिए कहती हैं, मौन के लिए कहती हैं, इसके अंदर बड़ा राज है। ऋषि मुनि मौन रखते थे, क्यों नहीं, उन्होंने भी तो कोई राज को समझ करके ये सब किया है ना। अभी लक्ष्य हमें मिल गया कि मौन रखते हुए मन में किसको देखना है, मन मना भव होकर के शिव बाबा को मन के सामने देखना है। तो जितना बाबा को मन के सामने रखेंगे, मन मना भव होंगे, शिव बाबा के समानता के स्वरूप में आते जाएंगे। वो सागर है तो हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे, हर गुण का, हर शक्ति का। और उस बात के लिए बाबा ने, साकार बाबा ने, आप देखेंगे कुछ मुरलियों के अंदर इशारे थे, बच्चे जब आप कम से कम 8 घंटा तपस्या करोगे, 8 घंटा तपस्या करोगे 24 घंटे में, तो कर्मातीत स्टेज आ जाएगी। समय ऐसा है अभी, कर्मातीत स्टेज अपने आप नहीं आती है, उस स्टेज को लाने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, और दृढ़ संकल्प के अनुसार पुरुषार्थ भी प्रैक्टिकल चाहिए। तब आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर क्या परिवर्तन आ गया, 2 हफ्ते के अंदर क्या परिवर्तन आ गया, 1 महीने के अंदर क्या परिवर्तन आ गया, फिर नेचुरल हो जाता। तो अभी सभी क्या करेंगे, अपनी स्थिति को नेचुरल बनाएंगे, नेचुरल, जैसे देवताएं नेचुरल मुस्कुराते रहते हैं, तो सभी भाई बहने नेचुरल बाबा की याद में मन लगा के सदा मुस्कुराते रहेंगे, तो आपकी मुस्कान जो है सारी दुनिया में, सारी दुनिया को क्या बना देगी, फूलों का बगीचा बना देगी। ओम शांति।